प्रातः क्लास चल रहा था 29/12/63 रिवाइज हुआ 64 में। दिल्ली का प्रातः क्लास है 8वें पेज पर। बात चल रही थी तीन पैर पृथ्वी का कोई खर्चा नहीं है, है कोई खर्चा? अभी वामन अवतार दिखाते हैं, कहते हैं उनको तीन पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे, सारे सृष्टि की बादशाही ले ली। उनतीस बारह 63-64 की वाणी का 9वां पेज। तो देखो तीन पैर पृथ्वी देने वाले राजा बलि जैसे इतने बड़े बड़े हुए, बस उनको बोलो ये कोई खर्चा थोड़े ही है, तुम घर में एक कोठरी ही खोल दो, गीता पाठशाला बना दो, वहां लिख दो, रूहानी सर्जन फॉर हेल्थ, तो सर्जन भी लिख दो और प्रोफेसर भी लिख दो, स्पिरिचुअल टीचर भी लिख दो, उनके ऊपर हेल्थ एंड वेल्थ फॉर 21 जनरेशन लिख दो। अब देखो उस कोठरी में कोई खर्चा थोड़ी हुआ, कोई भी आवे उनको थोड़ा सामने बिठा करके बोल दो मन मना भव, अर्थात अभी तुम आत्मा हो, तुम आत्मा अपने बाप को याद करो, तो तुम आत्मा को जन्म जन्मांतर का बेहद का वर्षा मिल जाएगा। फिर ये सृष्टि का चक्र समझाना है, नक्शे तो साहब के पास बहुत ही दिए हुए हैं, बच्चों के लिए पहले नक्शे चाहिए ना स्कूल में, किसको भी समझाओ ये है अंधों के आगे आईना, ये चित्र अंधों की लाठी है और ये बाबा ने बनवाई है ना, कहते हैं हे भगवान तुम सब हम अंधों की लाठी हो। अब उन अंधों की तो बात नहीं है, वो तो देख ही नहीं सकते हैं, ये बुद्धि की आंखें हैं, जिसको डिवाइन इनसाइट कहा जाता है, और वो आंखें सबकी बंद हैं, अब बाबा कहते हैं मैं आकर के बच्चों को तीसरा नेत्र देता हूं बुद्धि का। उसको कहा जाता है इनसाइट। आउटसाइट नहीं तो बरोबर। अभी हम आत्मा जान गए कि वो तीसरा नेत्र देने वाला बाबा आया हुआ है। उस बाबा को तीसरे नेत्र से जाना जाता है, बुद्धि से जाना जाता है। अरे घर बैठे सब जानती हैं कि हाँ बाबा आप आ गए हो। मैं आपकी बहुत पुरानी शिकील दी बच्ची हूँ, क्या बाबा आप हमको नहीं पहचानते हो? पर मैं तो आपको पहचानती हूँ, ऐसे भी लिख देते हैं। मैं आपकी हूँ, आपकी होकर के रहूंगी, कभी देखा भी नहीं है फिर भी चिट्ठी लिख देती है। तो देखो ये बुद्धि की आंखें हैं, बुद्धि की जांच है। आंखें जिन्होंने देखा ही नहीं, बिगर पहचान के ऐसे ही कोई को चिट्ठी लिख देती है, कभी नहीं लिखेंगी। तो देखो ये बच्चियां चिट्ठी लिख देती है, वंडरफुल बात है ना। बाबा मोस्ट वंडरफुल है और तुमको वंडर है। बैकुंठ इज द वंडर, ओनली वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वो जो कहते हैं ना सात वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, तुमने सुना है? कहते एक चीन की दीवार है, ताजमहल है, फलाना फलाना है। नहीं, वो तो मनुष्यों के बनाए हुए वंडर है। ये बैकुंठ तो भगवान का बनाया हुआ एकदम वंडर है। और ये भारतवासियों का होता है। बाहर में भले कहते हैं बहिष्ट हेवन, पर उनको इतना मालूम नहीं है जितना तुम भारतवासियों को मालूम है कि बरोबर सूर्यवंशी श्री लक्ष्मी नारायण सतयुग में राज्य करती थी, त्रेता में रामचंद्र। अब बताओ फिर ये कृष्ण द्वापर में कहां से आ गया? सतयुग में तो 16 कला संपूर्ण लक्ष्मी नारायण हुए, त्रेता में 14 कला संपूर्ण रामचंद्र हुए, फिर द्वापर में कृष्ण कहां से 16 कला संपूर्ण हो गया? द्वापर में तो शास्त्रों में भी बताया है 8 कलाएं रह जाती हैं। वो देखो बेचारे गीता सुनने के लिए कहां से निकल करके आते हैं। اور یہاں کہاں سے نکال کر کے دوآپر میں ٹھوک دیا. بندر ہے نا, مایا نے بدھی کو برابر تارا لگایا ہوا ہے, سب کو ایک دم گاڈ ریس کا بڑا تالا لگایا. اور سو بھی نمبر ون تالا ہے, بڑے بڑے سنیاسی, بڑے بڑے ودوان, بڑے بڑے پڑھے ہوئے بنارس میں سب کو ٹائٹل مل جاتا ہے. ایک یونیورسٹی ہے وہاں ان کو شری شری 108 جگت گرو کا ٹائٹل, پھر سرسوتی جی مہاراج کا ٹائٹل. ارے سرسوتی تو مما گیان گیانیشوری, اور ان کو ٹائٹل دے دیا ہے بہت شاستر پڑھنے کا, دبڑ میں ڈالنے کے لیے. اگر ایسا نہ ہوتا تو کیوں ہوتا کہ برابر برہما کے ہاتھ میں یہ شاستر دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں ہے؟ ٹیچر ہے, پروفیسر ہے یا لیکچرر ہے, جو ویاکھیا کرتا ہے وہ ٹیکسٹ بک ہاتھ میں لیتا ہے کہ اسٹوڈینٹ ہاتھ میں لیتا ہے؟ اسٹوڈینٹ ہاتھ میں شاستر لیتا ہے, ٹیکسٹ بک لیتا ہے, پوئم یا پوئٹری لیتا ہے. ٹیچر اس کو ایکسپلین کرتے ہیں تو برابر برہما کے ہاتھ میں شاستر ہے. کون سے برہما کی بات ہے؟ دادا لکھ رہا برہما کے ہاتھ میں شاستر. ان کا ایسا کوئی ویڈیو ہے؟ کہاں کی بات ہے؟ ارے کوئی تو کارن ہوگا نا جو برہما کے ہاتھ میں شاستر دے دیا ہے. پھر گایا بھی جاتا ہے, برہما بھی اتر آئے تو بھی تم نہیں سمجھیں گے. اب کہاں سے اتر آئے؟ کہاں سے اتر آئے؟ سوکھم بتن سے. تو بھی نہیں سمجھیں گے. کوئی کس کو غصہ کرتے ہیں تو بولتے ہیں تم کو اتنا سمجھاتا ہوں, پرنتو تم ایسے نردھن کے ہو, نندک, جو برہما بھی اتر آئے تو بھی تم نہیں سمجھیں گے. ایسے کہہ دیتے ہیں نا. تو دیکھو برہما کی مت مشہور ہے نا. پرنتو برہما کو بھی تو مت ان سے ملتی ہے نا. کن سے؟ ان سے کہہ کر اشارہ کس کو کیا؟ ان کو کہہ کر کے دور کیوں کیا؟ تو سیمت ہے اونچے اونچے بھگوان کی. श्री कृष्ण की मत तो कोई है ही नहीं, उनका तो कोई भी शास्त्र नहीं है, वो तो सतयुग में वो कोई थोड़े ही धर्म स्थापन करते, उनका धर्म स्थापन किया हुआ नहीं है, ये तो धर्मशास्त्र ही चार है और कोई शास्त्र नहीं है, मुख्य धर्म ही शास्त्र है चार। देवता, इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन। धर्मशास्त्र माने जिस जिसने जो धर्म स्थापन किया हुआ है उनका शास्त्र, उन्तीस बारह तिरसठ अब 64 की वाणी का 10वां पेज। तो मुख्य धर्म तो है ही चार, गीटिज्म, इस्लामिज्म, बौद्धिज्म और क्रिश्चियनिज्म, और ये मुख्य धर्म है। गीटिज्म में दोनों आ गए, कौन कौन से? सूर्यवंश और चंद्रवंश। गाया भी जाता है परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण, देवी देवता और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। बाबा कहते हैं मैं आकर के तीन धर्म स्थापन करता हूं, पहले इन शूद्रों को ब्राह्मण बनाता हूं। किसके द्वारा है? इन शूद्रों को ब्राह्मण बना के ले आता हूं। कौन शूद्र है? पहले इन शूद्रों को, इन कहके किसकी तरफ इशारा किया है? अरे शूद्रों का खान पान कैसा होता है? पश्चिम भारत में सिंध हैदराबाद में जो ब्राह्मण थे उनका खान पान कैसा होता था? अशुद्ध खान पान था ना, तो इन कह करके इशारा कब किसकी तरफ किया है? रामवाली आत्मा की तरफ इशारा किया। इन शूद्रों को ब्राह्मण बनाता हूं, अगर रामवाली आत्मा की तरफ इशारा किया तो फिर बनाने वाला कौन? रामवाली आत्मा तो शूद्र हो गई, फिर बनाने वाला भी चाहिए ना शूद्र को ब्राह्मण, वो कौन? अरे पहले क्या करता हूं, पहले शूद्रों को ब्राह्मण बनाता हूं। कौन से शूद्रों को? उन दुनियावी शूद्रों की बात नहीं है, इन किधर इशारा किया होगा?
बेसिक
है,
बेसिक।
हाँ जी, जो भी थे सिंध हैदराबाद से आकर के ब्राह्मण बने, पहले पहले ब्रह्मा के द्वारा, उनकी तरफ इशारा किया, इन शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में ले आता हूं। फिर ये ब्राह्मण देवता बनते हैं। जो 33 मार्क्स से पास होते हैं मार्क्स से कम अर्थात ना पास, तो उनको कहा जाता है क्षत्रिय। तो जो क्षत्रिय बने उनको बाण क्यों दे दिया? क्षत्रिय बना है ना, इसलिए वो बाण दे दिए, नहीं तो निशानी कहां से आवे। तो ये लोग समझते हैं कि हिंसा का कोई बाण मारते हैं। हिंसक बाण की बात है या बात का तीर मारने की बात है? हिंसा की तो बात ही नहीं। तो युद्ध के मैदान में माया पर जीत ड्रा पहनने के कारण उनको क्षत्रिय कहा जाता है। ये महाभारी महाभारत युद्ध सामने खड़ा है, परंतु ये कोई हिंसक युद्ध है क्या? कौन सा युद्ध है? हैं? माया का हिंसक युद्ध है। उस माया पर जिन्होंने जीत नहीं पहनी वो क्षत्रिय कहे गए। और गीता के लिए गाया भी जाता है, जो युद्ध के मैदान में मरेंगे तो कहां जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। और विद्वान आचार्यों ने क्या समझ लिया? कि कोई हिंसक युद्ध हुआ होगा। जो भी हिंसक युद्ध करेंगे और युद्ध करते करते मर जाएंगे तो वो स्वर्ग में जावेंगे। कोई गया स्वर्ग में? अरे स्वर्ग है ही कहां। जो कोई स्वर्ग में जावेगा? ये तो माया के युद्ध की बात है, जो भगवान बाप आकर के कराते हैं। कहते हैं कामेश क्रोधेश, कि काम और क्रोध तेरे महाशत्रु हैं। इनको लड़ाई लड़के जीतेगा या ऐसे ही जीत लेगा? हैं? भगोड़ा बन के नहीं हैं? तो जो भगोड़े बनते हैं वो नापास हो जाते हैं। क्योंकि क्षत्रिय बना है ना, वो जो सिपाही लोग सेना या मिलिट्री वाले होते हैं ना, उनको भी ऐसे कहते हैं, परंतु नहीं, वो तो अंत में मते, गाया भी जाता है अंत मते सुगते। हिंसा करते तो फिर से जन्म लेकर के हिंसा वाली लड़ाई में चले जाते हैं। और तुम अहिंसा की युद्ध करते हो तो अहिंसा की दुनिया में चले जाते हो। उनका अंत मते सो गते हो जाता है। तभी तो इतने सिपाही मिलते हैं लड़ाई करने के लिए। फिर उस पानी में चले जाते हैं। परंतु ये कोई वो लड़ाई नहीं है, ये तो अपने युद्ध के मैदान में जो माया पर जीत पहनेंगे 100 स्वर्ग का मालिक बनेंगे। जो गाया हुआ है माया जीते जगत जीत, ये काम आदि की माया है। तो कहते हैं काम जीते जगत जीत, न कि किसका खून करेंगे तो स्वर्ग का मालिक बनेंगे। परंतु अभी इन बच्चों को क्या समझावे, किन बच्चों की बात की है? अरे बाबा के सामने जो बेसिक में बच्चे बैठे थे उनके लिए बोला, इन बच्चों को क्या समझाएं, ये तो बच्चा बुद्धि है ही, किसको फॉलो करते हैं है? बच्चा बुद्धि को फॉलो करते हैं, इनको क्या समझावें क्या बतावें? जो बच्चे हैं बाबा के वो तो बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए। क्या समझ गए कि हमारी माया की लड़ाई है, काम क्रोध लोभ मोह की लड़ाई है, हमारी कोई हिंसक लड़ाई नहीं है। ये पहले निश्चय रखो कि बरोबर हम भी पढ़ते हैं। हम कोई कृष्ण से पढ़ाई थोड़े ही पढ़ते हैं, और न हम कोई सतयुग में कृष्ण जैसे बनने वाले हैं है? कृष्ण जैसे बनने वाले हैं कि कृष्ण जैसे बच्चा को बच्चों को जन्म देने वाले हैं? बाकी कृष्ण तो बनना जरूर है। कौन सा कृष्ण? सतयुग का या संगमयुगी कृष्ण जैसा बनना है? बाकी वो कोई अभी थोड़े ही है। कृष्ण को तो ताज होता है ना। अरे आजकल तो बहुत ठगी करते हैं। गवर्नमेंट कोई है नहीं, नहीं तो कोई ताज पहन करके, पीतांबरी पहन करके, मुरली लेकर के कहते हैं मैं कृष्ण हूं। अरे ये कोई बात है? ये क्यों हुआ है? क्योंकि ये गवर्नमेंट रिलीजियस है। कौन सी गवर्नमेंट की तरफ इशारा किया है? क्यों उनके सामने कौन पीतांबरी पहन के कृष्ण आ गया? नहीं, मथुरा में एक निकला था सत्संग, कोई ब्रह्मा कुमारी जो जज की लड़की थी उससे शादी करके बैठ गया और पीतांबरी पहन के ढोलक मजीरा बजाने लगा। सत्संग में ढेर माताएं आने लगी, 100-200 की पार्टी बना करके माउंट आबू चला गया। وہاں ان کو ترجیح مل گئی. تو کیسی گورنمنٹ ہوئی؟ یہ ارریلیجیس گورنمنٹ ہے جو ایسے ایسوں کو بھی ٹھکانہ دے دیتی ہے. اگر کوئی ریلیجیس گورنمنٹ ہوتی اور ایسے کوئی اپن کو کرشن کہلاوے تو ایک دم جیل میں ڈال دے. بولے یہ تو بڑا ٹھگنا ہے, منشیوں کو ٹھگتا ہے کہ میں کرشن ہوں. ارے ایسے تو بہت ٹھگتے ہیں, سمجھا نا؟ باپ بیٹھ کر کے سمجھاتے ہیں. اچھا تمہارا بھاؤ تو کرشن میں بہت ہے, بھاونا کا بھاڑا مل جاتا ہے نا, تمہارا تو کرشن میں پریم ہے نا, تو تم واہ کرشن آہ کرشن تم کرشن کو یاد کرتے رہو. بھاونا پوری کرنے کے لیے تم کو ساکشاتکار ہو جاتا ہے. بس تم تو ان کے پیچھے پڑ جاتی ہو. کس سے بولا ہے؟ کون سی ماتاؤں سے ہے؟ جو بیسک میں ماتائیں تھی کرشن کا ساکشاتکار کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی؟ تم ان کے پیچھے پڑ جاتی ہو, ان کے اوپر موتی جیسے لڈو بن جاتی ہو. ایسے بہت اچھا بھی ہوتی ہے کیونکہ ہے تمہاری بھاونا کا بھاڑا. اب وہ کرشن تو بھلا چیتن ہوا, جڑ چتر کے پیچھے بھی تمہاری بھاونا کا بھاڑا مل جاتا ہے اور تم کو ساکشاتکار ہو جاتا ہے. باپ کہتے ہیں میں بھی یہ ساکشاتکار کراتا ہوں. میں یہ دیوی درشٹی کا دان جو ہمارے پاس ہی رہتا ہے یہ میں کسی کو نہیں دیتا ہوں, بلکہ یہ بھکتی مارگ میں مجھے کام آتا ہے. یہ سرویاپی کا گیان کیوں ہوا؟ سنو بابا بتاتے ہیں. دیکھو کوئی جا کر کے ہنومان کی پوجا کرتے ہیں تو ان کو بھاونا کا بھاڑا مل رہی ہے. ابھی ایسے وہ سمجھتے ہیں کتھا سنی ہے, رام چندر کا بڑا ششیہ مہارتھی تھا تو مہاویر بننے کے لیے ان کی جا کر کے تپسیا کی, نودا بھکتی کرتے ہیں نا. نودا بھکتی مانا ایک دم ستو پردھان بھکتی. تو ان کی بھاونا کا بھاڑا دینے کے لیے بابا ان کو ڈراما انوسار ہنومان کا بھی ساکشاتکار کرائے دیتے ہیں. ان کو کرانا ہی ہے, راضی کرنا ہی ہے, سمجھا نا؟ اور ان میں بھلا ان کو کیا مل گیا؟ बस उन भक्त बेचारों की दिल्ली ही पूरी हो गई। 29/12/63 / 64 की वाणी का 11वां पेज। तो ये भक्ति मार्ग में काम आता है, तो आ करके बताते हैं भक्ति मार्ग में जिस जिसको जो जो भावना से पूजा करते हैं। कृष्ण में भी कोई बच्चे की भावना है तो उनको साक्षात्कार हो जाता है। बाबा कहते हैं मैंने ये भावना पूरी की, तो ये समझते हैं बरोबर हनुमान भी है। गणेश की भी कोई पूजा करते हैं, पूजा करने वाला और उनको साक्षात्कार हो तो बोलेगा गणेश भी भगवान है। बाद में तो सांप कच्छ मच्छ ये सभी भगवान हो जाते हैं, परंतु बाबा कहते हैं उनको राजी करने के लिए भावना का भाड़ा मैं कर देता हूं। बाकी यहां तो ये नॉलेज है और ये नॉलेज तो अच्छी तरह से पढ़नी है। बाप को याद करना है और बाबा कहते हैं कैसे याद करो, बस सुबह को अपने बाबा को बोलो, ओ बाबा आप कैसे अच्छे हो, आपकी याद तो अभी हमको रात दिन रहनी चाहिए। बाबा आपका बहुत शुक्र है आप आए हुए हो, बस बैठ करके ऐसे मेहनत करते रहो। बाप बहुत अच्छा है, हमको स्वर्ग का मालिक बनाए रहा है, तो इसको कहेंगे मन मना भव। फिर मध्याजी बाबा, पहले मन मना बाबा फिर मध्याजी बाबा, बस जितना तुम सुबह को बैठ करके याद करेंगे तुम्हारे विकर्म भी भस्म होते जावेंगे। और ये नॉलेज है, इस नॉलेज का फिर तुमको पद मिलेगा, इसमें कोई तकलीफ थोड़ी ही है। भले सोए पड़े रहो, तुम्हारी कोई तपस्या थोड़ी है कि बैठ करके आसन लगाना है, नाक बंद करना है, कान बंद करना है। ये बाबा तो बहुत सीखा हुआ है और बाबा को बहुतों ने सिखलाया है। ये सभी मत्था मारने की बातें। अभी मम्मा को बोलो ऐसे बैठ करके करो तो कभी कर सकेगी क्या? कभी नहीं कर सकेगी। ये टांगे हैं मोटी, बेचारी एक के ऊपर एक चढ़ा भी नहीं सकती। बाबा ने इनको थोड़ा सा सिखलाया भी था तो जगदम्बा ब्राह्मणी, ये ब्रह्मा मुख वंशावली सरस्वती, उनको कहा जाता है जगदम्बा, और उनको कहा जाता है पिता। अच्छा, बाबा ने आज तो बच्चों को थोड़ा बहुत समझाया, फिर ये पढ़ाई तो रोज समझाएंगे ना। नई नई पॉइंट्स बच्चों को रोज समझाते हैं, और हम लोग कचहरी करते हैं। क्या पूछते हैं? कोई ने भी किसी को कभी भी किसी प्रकार का भी दुख तो नहीं दिया? मनसा की तो बात ही नहीं। दुख कोई को नहीं देता है, ये तो तुम्हारा बाप है, सबको सुखी ही देता है। दुखी को बिल्कुल सुखी बनाना हमारा फर्ज है। अगर तुम किसको दुखी देंगे, दुख करेंगे, तो फिर दुखी होकर के मरेंगे। ये कोई साप नहीं देता हूं। बाबा कहते हैं तुम कोई को भी दुख देंगे, ये बाप तो सुखी देने वाला है। तो क्या कहें, ये पाप हो गया ना क्रोध का, तो जरूर दुख देंगे। धर्मराज बाबा बोलते हैं फिर मैं तुमको दुख दूंगा। फिर माने कब? अभी तुम दुख देते हो, फिर मैं दुख दूंगा। तो ये दुखी होकर के मरना हुआ ना। तो ये भी हिसाब है, ये कोई साप की बात तो नहीं है। नहीं, बाबा तो कभी भी साप नहीं देते हैं। साप देती है माया, और वरदान देते हैं बाप। उस माया को रावण कहा जाता है। माया रावण। अच्छा, अभी हम पूरा करते हैं, क्योंकि बच्चों को जाना करना भी होता है। अभी देखो, बाप भी कहते हैं वंदे मातरम। ये माता है ना, गाया जाता है ना कि कुंती ने, कुमारी ने सूर्य का आवाहन किया, तो सूर्य का आवाहन करने से वो माता बन गई। आवाहन किया ना, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, तो माता बन गई। तुमने सुना है ना, आखानियां पढ़ी है ना, वैसे ही अनसुईयाएं भी वो तो खुद कहते हैं मैं इनका बालक बन करके तो बालक बनेंगे तो जरूर वंदे मातरम कहेंगे ना। कौन बनेंगे है? ब्रह्मा विष्णु शंकर इन अनुसुईयाओं का बालक बनेंगे तो जरूर वंदे मातरम कहेंगे ना। अभी तुमको गुरु का पद मिलता है, माता गुरु, ये है ना। तो जैसे मैं कर्म करूंगा तुम देख करके तुम भी करेंगे। बंदरे मातरम कोई धरती को थोड़ा ही करना है, धरती तो जड़ है, जड़ की कोई वंदना की जाती है क्या? वंदे मातरम कोई वॉइसलेस नहीं, वंदे मातरम कोई वायलेंस वाली को थोड़ा ही करना है। जो कोई खांडा उठा करके हिंसा करने वाली है, वंदे मातरम तो इन माताओं को करना है। जो ज्ञान गंगाएं हैं इनको करना है। ये तो बहुत शास्त्र पढ़ा हुआ है परंतु नहीं, जो अब बाबा सुनाते हैं, हम कोई शास्त्र नहीं सुनाते हैं, जो बाबा हमको सुनाते हैं वही हम सुनाते हैं। अभी कोई शास्त्र वास्त्र की तो बात ही नहीं है। 29/12/63/64 की वाणी का 12वां पे ये बाबा कोई शास्त्र पढ़ा हुआ है क्या? वो तो ज्ञान का सागर है ना। उनका कोई बाप है? उनका कोई टीचर होगा? मना, उनका कोई बाप है वर्तमान में? 63-64 में बोला है ना, ब्रह्मा का तो बाप है। उनका कोई टीचर होगा? किनका है? अरे शिव बाबा का होगा। मैंने भविष्य में की बात बताई कि भूत वर्तमान की बात बताई? भूत की बात होगा, भविष्य की बात पूछी। उनका कोई गुरु होगा? कभी नहीं। मनुष्यों का सबका बाप और टीचर मनुष्यों का गुरु जरूर होगा। तो बाप कहते हैं मेरा फिर बाप टीचर गुरु कौन होगा? मेरा तो नाम ही है ज्ञान का सागर। तो फिर क्या है? मैं तो सबका बाप हूं। मेरा कोई बाप टीचर गुरु नहीं। मेरा बाप कहां से आएगा, मुझे कौन जन्म देगा, मुझे कौन वर्षा देगा। भगवान का जो पार्ट होता है उसका कोई बाप टीचर गुरु होता है क्या? हाँ, मेरा बाप और माँ यहां युक्ति से बनाए देते हैं और फिर कहते हैं वंदे मातरम। तो वो माँ हो गई ना, तो वो तो युक्ति है। देखो ये बच्चे भी होते हैं ना, तो उनको आ करके उठाते हैं, तो देखो ये भी जादूगर है। बाप को बच्चा बना देता हूं, गोदी में उठाई लेते हैं, तो जादूगर हो गया ना। अच्छा, रिकॉर्ड चला, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, इसका भी अर्थ समझते हो ना कि तुम ही माता पिता हो, सखा भी हो। हैं? संस्कृत में क्या कहते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव। तुम एक को कहा जाता है या दो चार को कहा जाता है? तो जिसको तुम कहा वो एक वचन हुआ ना, तो माता पिता दो कैसे हो गए? कहां की बात है? जो ब्रह्मा माता है वो ब्रह्मा ही जगत पिता में प्रवेश करता है। इसलिए एक ही तन के द्वारा माता पिता हो गए। हिंदुओं में उनका चित्र बनाया गया है अर्धनारीश्वर। तो कहते हैं तुम मात पा पिता, तुम मात हो पिता हो सखा भी हो। बाबा जब इसमें आते हैं तो तुमको याद तो जरूर करना है शिव बाबा को। बुद्धि में रखना है ये इनका रथ है। किनका, किनका रथ है? हाँ? अरे किनका रथ है? शिव बाबा का रथ है, न कि कृष्ण का। तो ये बैठ करके खेलते भी हैं, नहीं तो बाबा थोड़े ही खेल ना करना करते हैं। नहीं बोलते हैं, ये भी तो ब्रदर है ना, नहीं तो बाबा थोड़े ही खेलते करते। नहीं बोलते हैं हम सब आपसे पढ़ते हैं। ये कहते हैं बाबा हम कहेंगे हम सब क्लास फ्रेंड्स हैं और एक बाबा के बच्चे हैं, इसलिए आपस में बहन और भाई हैं। दूसरा कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि पवित्र रहने की युक्ति भी तो चाहिए ना। तो जब ब्रह्मा के बच्चे हुए तो सभी भाई बहन हैं, भाई बहन है तो एकदम शादी कैसे कर सकते। तो क्रिमिनल असॉल्ट हो जावे। कहते हैं ना हम सभी आपस में हिंदू चीनी भाई भाई, सब भाई बहन ही है। अरे भाई बहन है तो एक बाप के बच्चे हो सकते हैं, तो शादी क्यों करते हो। भाई बहन की शादी वादी होती है क्या? नहीं, अभी के समय तुम सब सच सच ब्रह्मा और सरस्वती यानी ब्रह्मा मुख वंशावली हो। वो भी कहते हैं बाबा और वो भी कहते हैं बाबा। तो ये युक्ति है कि जब बहन और भाई हो तो फिर बेकार में कैसे जा सकते हो। अगर तुम विकार में जाएंगे तो फिर धर्मराज के रूप में बाबा बोलते हैं मैं बिल्कुल ही अच्छी तरह से सजा दूंगा। क्योंकि ये है बिल्कुल हाईएस्ट क्रिमिनल असॉल्ट। क्या कि भाई बहन आपस में शादी करके बैठ जाएं? तो भाई बहन सो भी दुनिया को पवित्र बनाने की शिक्षा देने वाले, और तुम अगर आप पवित्र बन गए तो ऐसे समझो कि बड़ी सजा के खा पात्र बन जाते हो। तो मतलब बताए देते हैं, ये ऐसा ही है जैसे चार माह होती है ना, नहीं चार मार होती है ना, तो काम से अगर कोई ने सजा खा ली तो जैसे चार मार से गिरा। अब गिरेंगे तो हड्ड गुड्ड चूट जावेंगे। कितना समय उनकी बुद्धि में ज्ञान ही नहीं ठहरेगा। बहुत बच्चे हैं, जो ज्ञान यहां से उठा करके आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हुए। उनसे भी मिलो, पूछो क्या ज्ञान तुम्हारे काम का है। तुम किसी को समझा सकेंगे तो एकदम निल हो जावेंगे। अच्छा, ओम शांति।